शांति राजयोग की प्रयोगशाला में आज 23वां दिन है। आज की साकार मुरली में बाबा ने योग के लिए 3-4 बातें कही है। इसमें जो एक बात जो बाबा ने कही है कि मुख्य है याद, कि ज्ञान तो सहज है, कि किसी को ज्ञान सुनाना, 84 जन्म के चक्र का ज्ञान सुनाना बहुत सहज है, लेकिन मेहनत किस में है? याद में। तो कहीं कभार बाबा मुरली में कहते हैं कि याद बहुत सहज है, और कभी कहते हैं कि याद डिफिकल्ट है, कि मेहनत का सब्जेक्ट है। याद करना कोई मासी का घर नहीं है। तो ये हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी स्थिति कैसी है, और याद हमें मेहनत क्यों लगती है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है। कितने जन्मों तक यही हमारी प्रैक्टिस थी कि हम क्या है, यह शरीर है। तो जितना हमारा आत्मा का पाठ पक्का होता जाएगा, उतना बाप की याद स्वतः आएगी। दूसरी बात जो बाबा ने बताई है कि अथ कार्डे दिल यार्डे, कि तुम हो कर्मयोगी। तो आज हम देखेंगे कि कर्मयोगी कैसे बने, और अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करें जो हम कर्मयोगी बने। इसमें आगे बाबा ने कहा कि धंधा करते हुए भी क्या करना है, बाबा को याद करना है कि बाबा ने कहा तुम कितनी भी प्रतिज्ञा करो, हम विकार में नहीं जाएंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य क्या है? याद की, याद तो करना ही पड़ेगा। और बाबा ने आज रीजन भी बताया कि याद क्यों करना पड़ेगा, कि बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इतना जो विकर्म का बोझ है उसको विनाश कैसे करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हम कर्म योगी कैसे बने, कि कर्म करते समय बाबा को कैसे याद करना है। इसमें बाबा ने दो एग्जाम्पल भी दिया है कि जब कन्या की सगाई या शादी होती है तो वो अपने पति को नहीं भूलती, और बच्चे भी अपने बाप को नहीं भूलते, पर क्या होता है, हम हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा भगवान पूछे कि क्यों भूल जाते हो। जी तो बाबा ने कहा कि जैसे बच्चे बाप को याद करते हैं, कन्या अपने पति को याद करते हैं, ऐसे हमें भी बाबा को याद करना है। तो हम अपनी दिनचर्या में ऐसे क्या परिवर्तन करें जो हमारी याद निरंतर रहे। कि तो इसके ऊपर एक तो पूरी मुरली चली है, और 71st के लास्ट मुरली, उसमें बाबा ने उठने से लेके रात को सोने तक का पूरा परिवर्तन बताया है कि हमें क्या क्या परिवर्तन करना है। इसमें बाबा ने बताया कि जो आदि संकल्प है, कि उठते समय ही जो हमारा आदि संकल्प है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, जो यह संकल्प हमने पावरफुल कर लिया, बाबा ने बोला कि आदि संकल्प ही पावरफुल है तो पूरा दिन सहज रहेगा, कि वही याद का फाउंडेशन है। तो ऐसे हम जैसे अभी तो सब भिन्न भिन्न प्रयोग कर ही रहे हैं कि उठते समय ही कि बाबा को गुड मॉर्निंग करना, याद करना, कोई स्वमान याद करना। तो बाबा का यह क्या है मेन परिवर्तन, जो मुख्य फाउंडेशन है वो आदि संकल्प हमारा, जो फर्स्ट थॉट होगा उसके ऊपर हमारा पूरा दिन का आधार रहेगा। फिर इसी में बाबा ने दूसरा कहा है कि मैं किसका हूँ, कि दूसरा परिवर्तन ये करना कि मैं किसका हूँ। तो हम तो सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो ये दूसरा परिवर्तन हो गया। फिर तीसरा परिवर्तन जो बाबा ने कहा कि ये शरीर को क्या समझना है, मंदिर, कि ये शरीर हमारा मंदिर है और मैं आत्मा को क्या समझना है, वैल्यूएबल मूर्ति। बाबा ने कहा जब हम देह के भान को छोड़ते जाएंगे और आत्म समझेंगे कि मैं ये परमात्मा को चैतन्य वैल्यूएबल मूर्ति हूँ, यह परिवर्तन कर लिया तो फिर बाकी जो पूरे दिन का परिवर्तन है वो सहज रहेगा। तो इसके लिए हम क्या क्या अभ्यास करें जो हम अपने को सहज रीति से ये देह के भान को भूल आत्मा समझ सके। तो उसमें पहले तो हम जो करते हैं कि जिसको भी देखे उसको क्या देखे, आत्मिक रूप में देखे। या तो अब जब भी अमृत वेले के बाद का समय है उसमें ही हमें पूरा दिन का पता होता है, मोस्टली पता होता है कि दिन में हमें क्या करने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं। तो तभी जैसे हम स्थूल दिनचर्या फिक्स करते हैं अपनी, तो उसी समय भी हम अपना फिक्स कर सकते हैं कि ये कार्य करते समय इस रीति से बाबा को याद करेंगे, इसको मिलते समय ऐसे बाबा को याद करेंगे, ये स्वमान का अभ्यास करेंगे या फिर ड्रिल करेंगे। और फिर बीच बीच में साथ में क्या करना पड़ेगा, चेक भी करना पड़ेगा। नहीं तो जब शाम को नुमा शाम के समय बैठते हैं, या कभी कभार तो क्या होता है नुमा शाम भी नहीं होता डायरेक्ट, रात को सोते समय गुड नाइट करते समय भी फिर क्या होता है कि हमारा पूरा दिन तो हमारा खाली खाली हो गया, वेस्ट हो गया। जैसे हम अभी अपना ही अनुभव सुनाए तो पिछले 10-15 दिन में यही हाल हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ज्ञान योग तो कहाँ गया, जैसे खो ही गया, ज्यादा नहीं कि कहाँ चला गया। 2 दिन से ऐसे सोच ही रहे थे कि ऐसे क्या कर रहे हैं जो वापस पहले जैसा कर सके। पर जैसे समय इतना नहीं मिलता था, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी ओवर हो जाती थी, तो वो सब में फिर अचानक कल ही बोला शाम को ही। तो पहले तो मना किया था, फिर हाँ बोल दिया। तो जो आज मॉर्निंग में था, पहले उठते थे पर क्या लगता था कि रात को लेट सोए थकान है वापस सो जाओ, लेकिन गुड मॉर्निंग करके ही कभी तो बाबा को ऐसे बोलती थी, बाबा आप उठ जाओ मैं सो जाती हूँ। हाँ वो बोला बाबा हमारे लिए आप योग करना। तो जैसे आज आज पता था कि क्या है कि क्लास कराना है, तो कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो जैसे अपने आप ही नींद खुल गई और ऐसे थकान भी नहीं लगा। नहीं तो ऐसे ऐसे जरूरी नहीं है कि ये तो एक आधार हो गया, कि ये क्या हो गया, एक आधार हो गया कि होमवर्क मिला तो किया। तो ऐसे हर रोज ही हम यही समझे कि नहीं हमें ये करना है, कि नहीं हमें किसी के सुनाने के लिए नहीं, खुद के लिए, कि मनन चिंतन करेंगे, अलग अलग जैसे मुरली पढ़ेंगे और जो भी कुछ करेंगे तो फायदा किसका होगा, खुद का ही फायदा होगा। तो हर रोज हम यही सोचे कि नहीं हमें हमारे लिए ये करना है, तो फिर इजी रह जाएगा और हम पुरुषार्थ भी कर पाएंगे। फिर जो इसी मुरली में बाबा ने आगे कहा था कि जब मुरली सुनते समय क्या समझना है, गॉडली स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मेरे लिए आए हैं टीचर बन के पढ़ाने के लिए। यहाँ तक का तो सही है कि अमृत वेले उठना, मैं कौन हूँ, किसका हूँ वो, फिर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, मुरली सुनना, तो 8 बजे तक तो हम बढ़िया रहता है, सबका पुरुषार्थ अच्छा रहता है 8 बजे तक का, अमृत वेले से लेके, क्योंकि इसमें हमें कोई किसी का बंधन नहीं है और हम फ्री रहते हैं, कि हमें कुछ सोचना भी नहीं है कि दूसरे क्या कहेंगे, हमारी ये ड्यूटी है, हमें ये करना है, वो सब चीज़ों से हम फ्री होते हैं। तो 8 बजे तक हम अच्छे से पुरुषार्थ करते हैं, पर कि उस समय तक हमें लगता है कि ये हमारा अपना टाइम है, हम अपने लिए कर सकेंगे, पर जो भी चैलेंजेस आती है वो कहाँ पे आती है, कि कर्म क्षेत्र में हम जब जाते हैं, जब कुरुक्षेत्र का मैदान, कि जैसे हम आपस में कर्मों साथ में करना, कोई लेन देन करना, तो उसी समय है जिस पे हमारा योग का प्रयोग करना है। तो आज ही बाबा ने कहा कि हमें क्या करना, कर्मयोगी, कि हाथ से काम करते समय दिल से बाबा को याद करना है। तो जैसे सबकी सेवा अलग अलग होती है कर्म करते समय, तो जिसका जैसे कर्म है ऐसे ऐसे अपने को उस आधार पे योग का प्रयोग करना है। जैसे अभी के समय पे हम देखें तो हमारे साथ क्या होता है, आधा से ज़्यादा रिलेटिव से ही कन्विंस करने में चले जाते हैं कि आप ये करो, आगे ले जाओ आपके पेशेंट को, हमें बेड्स दो, हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो उस पर क्या होता, थोड़ी देर तक हम शांति से बात कर पाते हैं, जो अपना पर्सनल सुनाते हैं, कि सवेर 2-3 रिलेटिव से बात की, शुरू में शांति से सुनाया 10-15 मिनट, पर वही बात वो बार 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 पूछने आते हैं, तो फिर क्या होता है, चिढ़ जाते हैं, कि फिर गुस्सा आ जाता है कि एक ही वो बात समझाई फिर भी इतना क्यों करते हैं। तो जैसे आज ही मॉर्निंग इंग्लिश क्लास में सर ने सुनाया कि ये क्या है, ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, उस समय वो आत्मा का वह पार्ट है जो बजा रहा है, तो हमें अपना पार्ट बजाना है। इसके लिए भी आज की साकार मुरली में बाबा ने क्या कहा है कि यह क्या है, सबसे बड़ी दुकान है अट्टी, कि दुकान है, यहाँ सब प्रकार का सामान है, वक्कर है। तो बावन बताए यहाँ बाबा, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर है। तो जो बाप की यह इतनी बड़ी दुकान है, तो बच्चे क्या है, उसके मालिक है। तो इसी बात का हम कर्म योग के साथ जोड़कर पूरे दिन में प्रयोग कर सकते हैं, कि जैसे हमारे पास, हमारे सामने कोई आत्मा आई, तो उसको हमें क्या भावना रखनी है, कि हमें इसको देना है, चाहे वो दुख में है, चिंता में है, तो हमें उसको देने की भावना रखनी है, कि हमें इसको कुछ ना कुछ देना है। हम यही सोचेंगे कि हमारे पास जो हमारे बाप की इतनी बड़ी दुकान है, हम उसके मालिक है, जिसमें सुख, शांति, आनंद, पवित्रता सब कुछ है, तो इसी दुकान से हमें सबको देना है। तो हमारी भावना भी शुद्ध रहेगी और याद रखेंगे कि आत्मा अपना पाठ बजा रही है। तो हम फिर हमारा कर्मों में जो सामना करना पड़ेगा उसमें हमें थोड़ी आसानी रहेगी और हम सहजता से उसको समझा भी सकेंगे। फिर जो बाबा ने इसमें आगे कहा था परिवर्तन के लिए, बाबा का, जब तुम सेवा में जाते हो तो क्या समझना है, कर्म योगी है। इसमें बाबा ने कर्म योगी की परिभाषा दी है, कर्म अर्थार्थ व्यवहार और योगी अर्थार्थ परमार्थ, परमार्थ अर्थार्थ परमात्मा की सेवा, कि परमात्मा की सेवा के लिए है। तो बाबन का व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस रखना ही क्या है, सच्चा कर्मयोगी बनना। तो हम कर्म करते समय साथ साथ क्या सोचना है कि हम, हमारा यह मर्जीवा जन्म है, कि या सिर्फ यह जन्म हमारा सेवा के लिए हुआ है। जैसे ही सेवा पूरी हुई फिर हम चले जाएंगे। तो बार बार सेवा के समय अपने को याद दिलाना कि इतने समय के लिए ही मेरी ये सेवा है, वो भी परमात्मा, परमात्मा के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। संबंधी, जो भी संबंधी है उसको क्या समझना है कि ये भी सब परमात्मा के ही बच्चे हैं। और व्यक्ति को व्यक्त अव्यक्त भाव समझना और वैभव जो है उसको अनासक्त की वृत्ति रखेंगे। तो बावन का ये दो अनासक्त वृत्ति और अव्यक्त भाव से रहेंगे तो उसमें हम फंसेंगे भी नहीं। जो व्यक्त भाव रखेंगे तो क्या होगा, मकड़ी की जाल की तरह फंसते ही जाएंगे सेवा के समय और फिर निकलना उससे मुश्किल होगा। तो पहले यही समझना कि सेवा के अर्थ अभी आए हैं, सेवा पूरी होते ही चले जाएंगे। तो ये फिर आना और जाना, जैसे बाबा कहते हैं कि बीच बीच में 1 सेकंड में परम धाम में बाबा को टच करके आ जाओ। तो सेवा के समय हम देखा, सेवा के समय हमारी स्थिति अच्छी रहेगी तो फिर शाम का योग कहो या दूसरे दिन का अमृत वेला कहो, वो भी इसके आधार पर हमारा पावरफुल रहेगा। तो इसमें हमें मेन सारा क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, जो भी लौकिक चीजें हैं उन सबको अलौकिक में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जैसे इसके ऊपर भी टाइटल ही एक मुरली का, कि लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की विधि, ये नवंबर 69 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा है कि जैसे कोई ऐसे गूढ़ विचार में है, कि कोई गुह्य सोच में है, तो उसको पता भी नहीं होगा कि वो उसने क्या खाया, कहाँ चल रहा है, कहाँ पहुँच गया। तो बाबा ने कहा तुम भी जब ऐसे, मन उस हिसाब से नहीं, कि तुम भी ऐसे जब बाबा की इतनी याद में रहोगे तो इतने सब कुछ करते हुए भी न्यारे रहेंगे, कि हल्के रहेंगे। उसमें जैसे चलते हैं तो क्या सोचना है कि कार्य करते समय कोई भी लौकिक कार्य के लिए हम जा रहे हैं तो पाँव से चल रहे हैं, लेकिन बुद्धि रूपी पाँव से परम धाम की ओर याद की यात्रा में रहना है। तो चलते समय ये चलना और बुद्धि से ऊपर चले जाना है। इसमें ही बाबा ने एक कहा है कि बाबा तो लास्ट तक सहयोग देने के लिए तैयार है, कि किसी भी कंडीशन में बाबा सहयोग देते रहेंगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सहयोग लेते नहीं। बाबन का लास्ट सांस तक भी बाबा सहयोग देंगे पर ऑक्सीजन ही नहीं लगाए, नली ही निकाल दे तो फिर बाबा क्या कर रहे हैं। इसी मुरली में बाबा ने आगे कहा है कि हाँ मुरली का है ये, कि बाबा तो उंगली पकड़ने के लिए, सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे ही नहीं लेते, ऑक्सीजन निकाल दे, नली ही निकाल दे तो फिर बाबा क्या कर रहे हैं। 28 की मुरली है, 28 नवंबर 69। तो बाबा ने बोला सहयोग मांगने की चीज नहीं है, कि हम पर क्या, बाबा ने कहा कि हमारा संस्कार बना हुआ है आदाकल्प के लिए, इसलिए मांगते रहते हैं। बाबा ने कहा सहयोग तो तुम्हारा अधिकार है, कि बाप से सहयोग लेना अधिकार है, सिर्फ स्नेह रखो, जितना स्नेह होगा तो सहयोग स्वतः ही मिलता रहेगा। तो जैसे ये क्लास मिला और ढूंढ रहे थे कि बोलना क्या है, तो मुरली लगी तो सच में ऐसे ही लगा कि ज्ञान योग से तो अभी फिसल ही रहे थे, बाबा ने वापस पकड़ लिया कि वो आशीष भाई को धन्यवाद कि उसने बोला। तो ऐसे लगा कि ये जो कि बाबा तो सच में बंधा हुआ ही है कि, पर हमें वो कभी पता पड़ता है कि बाबा सहयोग करने के लिए तैयार है, कभी नहीं पड़ता कि बाबा सहयोग दे रहे, लेकिन बाबा तो हमेशा सहयोग देता ही है। तो अभी और हम क्या कर सकते हैं जो हम निरंतर योगी रहे, जो कर्मयोगी बन सके, बीच बीच में बाबा का आह्वान करते रहे। और ये भी कर सकते, मान लो कि कोई परिस्थिति आई तो उसी समय बाबा को बता दे कि ये मुसीबत आई हुई है, संभालो। जैसे हमने पहले भी बताया था कि स्थूल रीति से कि हम जो करते हैं कि बाबा के जो जो फोटोस है उसको अलग अलग संबंध से है, तो ऐसे भी अलग अलग रीति से हम कर सकते हैं कि अभी आप लोग बताओ और हम क्या प्रयोग कर सकते हैं कर्म योग के। हाँ, जैसे कि आज का वरदान है कि कर्म के फल के असर, कर्म के असर बुरे या कर्म के असर वरदान। हाँ, लो मेकर वाला कि आज का वरदान है कि जो स्वयं के लिए लो बनाएंगे और फॉलो करेंगे वही दूसरों के लिए लो बना सकते हैं, जो खुद ही लो बना के ब्रेक करते हैं वो फिर पीस मेकर नहीं बन सकते हैं। तो हम इसके क्या कर सकते हैं कि एक एक दिन के लो बनाने हैं अपने लिए, कि जैसे वो अमृत वेले के बाद अपनी दिनचर्या फिक्स करें तो हमें लो बनाना है कि आज के दिन हम ये करेंगे, फिर साथ में चेक भी करने हैं कि कहीं हमने जो लो बनाया वो ब्रेक की नहीं होता। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम प्रतिज्ञा करते हो कि हम क्रोध नहीं करेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। तो जैसे एक सिंपल सी बात ले सकते हैं कि आज हम पूरा दिन चाहे कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करनी भी सहज है, दूसरों को सुनाना भी सहज है, पर जब सामने परिस्थिति आती तब क्या लगता है, क्रोध करना भी सहज है पर फिर बाद में पश्चाताप होता है, वो सहज नहीं। वो फिर उसमें फिर लगता है कि हमने तो क्या कर दिया। तो ये कि 8 बजे तक की स्थिति टॉप की है, जैसे बाबा बोलते हैं कि ऐसे समझ लो कि परम धाम में ही रहते नीचे है, पर 8 बजे तक की सत्युग की स्थिति, फिर धीरे धीरे त्रेता में चले जाते हैं, 9-10 बजे तक की त्रेता की रहती है, फिर द्वापर से होके शाम तो कलयुग की भी लास्ट की स्थिति हो जाती है। कि जैसे जो शास्त्र में गायन है रावण का कंस का, वो लास्ट होते होते वही बन जाते, फिर वापस शाम को क्या करते हैं, वापस तपस्वी बन जाते हैं, त्रेता सत्युग में पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक ही दिन में हमारी क्या स्थिति होती है, एक ही दिन में हम 84 का चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन करना क्या है हमें, 84 में से सिर्फ टॉप की पॉइंट में स्थित रहना है। टॉप की पॉइंट में स्थित रह सके इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना, प्रभाव कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहना है, डिटेच रहना है। तो जैसे कि कर्म से डिटेच नहीं हो जाना है, लेकिन कर्म के फल से प्रभाव से डिटेच होना है। एक ही मुरली में था कि हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, कर्म से ही डिटेच हो जाते हैं कि कर्म ही नहीं करना, तो फिर हम सबके प्यारे नहीं बन पाएंगे, लेकिन जितना जितना हम शरीर से न्यारे बनेंगे उतना दूसरों के भी प्यारे बन जाएंगे, लोकप्रिय प्रभुप्रिय बन सकेंगे। कि बाबन का कि दूसरे तुम्हें उलना देते हैं, उलना क्यों देते हैं, कि बातें तो बड़ी बड़ी करते लेकिन करते तो कुछ नहीं है। तो जितना हम शरीर से न्यारे होंगे उतना हमें उलेना कम मिलेगा और हम सबके प्यारे बन जाएंगे। तो जो भी पुरुषार्थ है उसका मेन क्या सार है, जितना भी हम योग के प्रयोग करें या जितनी भी योग की विधि अपनाएं, उसका मेन सार तो यही है कि शरीर को भूल के अपने को आत्मा समझना। जितनी जितनी आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएंगी उतनी बाबा की याद स्वतः ही आएगी। कि सब भी जो भी हद वक्र फर की बाप की जो भी सामान है उसका हमारा वंडरफुल अलौकिक वक्र है ये। हाँ, कि जैसे दुनिया के जो भी दुकानदार है उसके पास सामान खुट भी जाता है और उसमें क्या लाइन भी लगानी पड़ती है। जैसे आजकल के ही समय में देख लो कि दुकान पे क्या होती है, लाइन लगानी पड़ती है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ता है। कि पर जो बाबा की दुकान है उसमें कभी सामान अनलिमिटेड सामान है बाबा के पास, और टाइम की भी लिमिट नहीं है। तरावटी माल है कि जब फ्रेश पावरफुल पौष्टिकार तरावटी पौष्टिकार कि वो अनलिमिटेड कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी सामान ले सकते हैं। हाँ, भगवान का कि लेने वाले थक जाते हैं पर देने वाला लेने वाले कभी ठंडे हो जाते हैं, लेते नहीं है लेकिन देने वाला अथक है कि उनके पास भरपूर है, कभी खत्म नहीं होगा। जितना भी लेंगे और बढ़ता ही जाएगा। फ्री में मिलता है इसलिए ये प्रॉब्लम है। जैसे फ्री की वैल्यू कम होती है कि बाबा के जो भी दुकान है, जो खजानों की दुकान है बाबा की, उसको कोई ताली नहीं कोई ताला नहीं और दरवाजा ही नहीं है। ताला तो दूर रहा कि खुला है कि जब भी चाहो जितना भी चाहो ले सकते हो, जितना लूटना चाहे उतना लूट सकते हैं। तो आज की मुरली में जैसे कि योग के लिए जो बाबा ने कहा कि हथ काढ़े दिल याडे कि कर्मयोगी, कि हम कर्मयोगी है, धंधा करते समय भी क्या करना, बाबा को याद करना है। तो इसमें बाबा ने कहा कि तुम कितनी भी प्रतिज्ञा कर लो लेकिन याद मुख्य है, ज्ञान तो सहज है। जैसे आधा कल्प के कहते आए थे कि आप जब आओगे हम वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, सिर्फ आप एक को ही याद करेंगे। तो बाबा ने कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो मुझे ही याद करो। तो कर्मयोग के लिए जो अपने पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसको परिवर्तन करना है, तो जो परिवर्तन का मेन आधार है कि आदि संकल्प जो हमारा फर्स्ट थॉट है उठते हैं कि मैं कौन हूँ, कि जो 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 बाबा ने हमें भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं वो स्वमान का अभ्यास करना। तो उसी फर्स्ट थॉट के आधार पे पूरे दिन का जो हमारी स्थिति है उसका, और निरंतर हम योगी सहज योगी बन सकते हैं। दूसरा जो परिवर्तन है कि मैं किसका हूँ, तो मैं परमात्मा का हूँ। तो और जो तीसरा बाबा ने कहा कि ये जो शरीर है वो मंदिर है और मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, जो स्वयं भगवान को पसंद है वो मैं मूर्ति हूँ। तो जितना जितना हम अपने को मूर्ति समझेंगे और शरीर को मंदिर समझेंगे तो उतना हम देह से न्यारे होते जाएंगे और सबको प्यारे होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि मुरली सुनते समय प्रभु के प्यारे लोकप्रिय और प्रभु प्रिय बन जाएंगे। फिर मुरली सुनते समय क्या सोचना कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ, स्वयं भगवान परम धाम से टीचर बन के मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं और मुरली का एक एक शब्द क्या है, पद्मों की कमाई है, एक शब्द भी मिस करना माना हमारा पद्मों की कमाई मिस हो गई। फिर कर्म करते समय क्या समझना कि मैं कर्म योगी हूँ, कर्म संबंध में जाना है, यही सोचना कि ये मेरा मर्जी वा जन्म हुआ है, ये भी सोच सकते कि ये कर्म के लिए अभी अभी आए हैं, कर्म पूरा करके वापस चले जाएंगे। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों का बैलेंस रखना है और दोनों सिद्ध हो जाएंगे क्योंकि हम सिद्धि स्वरूप ही है। फिर बावन कहा कि व्यक्ति को ना देख, व्यक्त को ना देख उसको अव्यक्त में परिवर्तन करना है और वैभव को अनासक्त वृत्ति में परिवर्तन करना है। तो पूरे दिन में यही चेक करना है कि हमारा कितना अव्यक्त भाव रहा और अनासक्त वृत्ति रही। कहीं साधनों के पीछे हमारी साधना तो नहीं चली जाती, साधनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देना है, लेकिन साधना को इम्पोर्टेंट देना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, साधन हो या ना हो, लेकिन हमारा योग लगना चाहिए। जैसे कईयों को कभी क्या आदत हो जाती है कि रेड लाइट ही चाहिए तो ही योग लगे, सामने बाबा का फोटो चाहिए या गीत चाहिए, कमेंट्री चाहिए, तो ये सब स्थूल आधार है। तो हमारा योग कैसा होना चाहिए, निराधार होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो हम बाबा को याद कर सके। फिर शाम को सोते समय क्या सोचना है कि मैं कि बेड पे नहीं सो रहे हैं लेकिन बाबा की गोद में सो रहे हैं और सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में स्वप्न की शेर कर रहे हैं, तो स्वप्न भी परिवर्तन हो जाएंगे और बाबा तो सहयोग के लिए बंधा हुआ है, पर हमें जितना हम स्नेह रखेंगे उतना सहयोग स्वतः ही मिलेगा। ओम शांति।